पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बैठे हैं और विश्वविद्यालय में अलग अलग डिग्रियां ली जाती है। हम कौन सी डिग्री लेने बैठे हैं? देवी देवता की डिग्री लेने बैठे हैं। और संगम युग में विशेषकर एक स्लोगन परमात्मा पिता ने, प्यारे शिव बाबा ने हमें दिया है कि बाप समान बनो, फॉलो फादर। ये स्लोगन हमें दिया है और हमें ये लक्ष्य ध्यान में भी रहता है कि अगर हमें पास भी तो ओनर बनना है तो फॉलो फादर जरूर करना होगा। बड़े सिंपल फॉर्मूले हैं, कोई बहुत ऐसी कोई बातें नहीं है कि जिसके लिए माथा भारी हो जाए। बड़ी सिंपल चीजें हैं, फॉलो फादर करो तो पासवित ओनर हो जाएंगे। अभी कोई चीज सीखना, याद रखना, रिपीट करना, वो मेहनत का काम हो सकता है, लेकिन किसी को फॉलो करना हो तो इजी होता है। एक छोटा बच्चा भी फॉलो कर लेता है, माँ घर में झाड़ू निकाल रही होती है तो पीछे छोटा बच्चा भी लेके झाड़ू ऐसे ऐसे करके निकालने लगता है, फॉलो करना इजी हो जाता है। तो हमें भी फॉलो फादर करना है। तो और आज के विषय में हम चर्चा करेंगे, वैसे तो कई चीजों में फॉलो करना है बाबा को, लेकिन आज किसकी चर्चा करेंगे? दाता स्वरूप की, कि कैसे हम दाता स्वरूप में बाबा को फॉलो करें। अभी साकार बाबा को आप में से यहां प्रत्यक्ष रूप में किसी ने देखा है? साकार बाबा को नहीं, सब अव्यक्ति पालना वाले हैं। अव्यक्त बाप दादा को देखा है? हाथ खड़ा करें जरा, अव्यक्त बाप दादा को। कोई उसके बाद वाले भी हैं, अव्यक्त बाप दादा के पार्ट के बाद वाले। तो फॉलो करने के लिए पहले हमें उसके बारे में जानना जरूरी होता है जिसको हमें फॉलो करना है। अब बाबा को फॉलो करने में दोनों बाबा आ जाते हैं, शिव बाबा, निराकार ज्योति बिंदु, उसको भी फॉलो करने की बात है, और ब्रह्मा बाबा, हमारे अलौकिक पिता, उसको भी फॉलो करने की बात है, दोनों पिता को देखने का है। अब पहले हम शिव बाबा, निराकार ज्योति बिंदु को देखते हैं कि वो दाता स्वरूप क्या है, उसकी क्या विशेषता है। वो तो दाता स्वरूप ही नहीं, वो तो सागर है। स्वरूप तो हम बनते हैं, वो तो सागर है, और उसका गायन तो हम भक्ति मार्ग से करते आ रहे हैं कि जो मांगे वो सब देता है शिव बाबा को, जो मांगे सब देता है। इतनी कहानियां है भक्ति में भी, आपने सुनी होगी, वो एक चोर की कहानी सुनी होगी कि एक चोर था, वो चोरी करने निकला, तो चांदनी रात थी, करते करते जंगल में एक जगह पहुंचा तो उसको कुछ मकान जैसा छोटा दिखाई दिया, तो नजदीक गया तो एक मंदिर था, तो मंदिर में गया, अभी अंधेरा था चारों तरफ, लेकिन वो चांद की जो चांदनी थी उससे वो शिवजी के ऊपर एक जो घंटी बंधी हुई थी वो दिखाई दे रही थी, तो वो उसको दिखाई दी कि ये वैल्यूएबल चीज है, इसकी हम चोरी कर सकते हैं। अब उसको वो थोड़ी ऊंचाई पर थी तो बोला अभी इसको उतारे कैसे, तो वो शिवलिंग रखा हुआ था नीचे, वो शिवलिंग पर चढ़ गया और शिवलिंग पर चढ़ के वो घंटी उतार रहा था, तो शिवजी प्रसन्न होके बोले मांग मांग, तू मांगता है वो मैं तेरे को दूंगा। तो उसने सोचा शिवली ये कहां से आवाज आई, तो इधर उधर देखा, फिर आवाज आई, मैं तेरे पर बहुत प्रसन्न हूं, तू जो मांगेगा मैं दूंगा। उसने कहा कि आप कौन बोल रहे हैं? कहा मैं शिव बोल रहा हूं। भगवान शिव। तो वो एकदम नीचे उतरा, कहा कि मैं तो आपका अपमान किया, आपके ऊपर पैर रख दिया मैंने शिवलिंग पर, और आप कह रहे हैं कि जो मांग प्रसन्न हो गए हैं, तो इसका क्या कारण है? तो शिव जी ने कहा कि लोग मेरे पर बिल पत्र चढ़ाते हैं, आग धतूरा चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं, तो भी मैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूं, पर तू तो खुद मेरे ऊपर चढ़ गया पूरा का पूरा। तो इससे ज्यादा तो और क्या कर सकता है, तू खुद ही चढ़ गया, तो तेरी तो हर मनोकामना पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है कि तेरी मनोकामना पूर्ण करूं। तो देखो कितना भोला लेकिन कैसा दाता, कि चोर को भी उसकी मनोकामना पूर्ण करवा रहा है। तो बाबा जो है ना, बाबा के दातापन के कई किस्से हमने इस जीवन में भी अनुभव किए। भक्ति में तो सुनते थे कि कैसे वो देता है सबको, लेकिन जब ध्यान में आए, बाबा को पहचाना कि कैसे वो ज्योति बिंदु स्वरूप परमधाम में रहने वाला है, और कैसे मैं भी आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, और इस आध्यात्मिक यात्रा में मुझे आगे बढ़ना है, स्वयं को संपूर्ण बनाना है, तो बाबा से हम कैसे प्राप्त करें, कैसे लें, तो उसके कई किस्से प्रैक्टिकल हमारी लाइफ में हमने देखे। हम जब सीए कर रहे थे, एक ग्रुप क्लियर हुआ था और बाबा के बन गए। वैसे परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए सन्यासी बनने जा रहे थे, लेकिन किसी ने कहा कि आप ब्रह्मा कुमारी का ये राजयोग का कोर्स करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो खैर कोर्स किया हमने, बाबा के बन गए, और बाबा का पूरा 7 दिन में ही पूरा परिचय मिल गया, अच्छी तरह निश्चय हो गया, और बुद्धि से हम समर्पित हो गए। फिर हमने कहा अभी सीए क्यों करने का, मुझे तो सीए की कोई जरूरत नहीं है, भगवान को पाना था, भगवान मिल गया, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए मुझे, तो मैं सीए छोड़ देता। तो हमने दीदी से पूछा कि दीदी अभी हमको आप सेवा में लगा लो, हमको सीए नहीं करना है। तो दीदी ने कहा आप सीए ही करना चाहे, आपको सेवा ही करनी है ना? मैंने कहा हाँ सेवा ही करनी है। तो जनरल सेवा तो कोई भी कर लेगा, लेकिन जो सीए वाली सेवा है वो सीए ही कर सकता है। तो आपको जब ड्रामा ने इस एजुकेशन में रखा है सीए वाली में, और आप आधा पास भी हो गए हो, तो बाकी भी आप ये समझो कि बाबा इस डिग्री के द्वारा बहुत सेवा लेगा, इसलिए आप बाबा की याद में ये डिग्री ले लो, बाबा इससे सेवा कराएगा। और आप ये नहीं समझो कि इसमें पढ़ने में टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन ये भी सेवा में टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, ये समझ के आप एग्जाम दो और डिग्री ले लो। तो मैं बाबा के कमरे में गया, बाबा से प्राप्त करने की विधि बता रहा हूं कि हम कैसे बाबा से प्राप्त करें ताकि हम भी दे सके। तो बाबा के कमरे में गया और बैठ के बाबा से बात किया कि बाबा मुझे तो आपका 5-10 सेकंड का साक्षात्कार करने की इच्छा थी जीवन में, और आप तो जीवन भर के लिए मुझे मिल गए, तो मेरी तो सारी इच्छाएं पूरी हो गई। फिर भी दीदी कह रही है कि इस डिग्री के द्वारा आगे सेवा होगी, तो अगर आपको ये डिग्री इस सेवा लेनी हो तो आप ये डिग्री दिला देना, मैं पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। आपको पता है सीए में कितना टफ होता है, 5-7% रिजल्ट रहता था उस समय। और तो मैं और मेरा कजिन जो है वो साथ में एक कमरे में किराए पर रह के पढ़ते थे। मैंने तो बाबा को बोला कि मैं पढ़ने में टाइम नहीं लगाऊंगा, आपको डिग्री दिलाना हो तो आप दिला देना। तो मैं अमृत वेला, फिर मुरली क्लास, फिर जॉब करता था तो जॉब, फिर सेंटर पर सेवाएं करना, फिर भोजन अपना बनाना, फिर और रात को फिर मैं किताब लेके हाथ में पढ़ता था। पढ़ते पढ़ते कब नींद आ जाती थी, किताब साइड में गिर जाती थी। तो मेरा कजिन मेरे को बोले कि ललित तू सीए में पास नहीं हो सकता, मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूँ, कि तू सीए में पास नहीं हो सकता। इनका कोई बात नहीं, देखेंगे जो भी है भगवान को मंजूर होगा। वो बहुत स्टडी करता था, 12-14 घंटे बैठ के नोट्स बनाना, ये वो सब कुछ करता था। और मैं तो पढ़ा, सो गया, रेस्ट किया। फिर हर 6 महीने में एग्जाम होती थी, तो मैंने एक एग्जाम दिया, फिर दूसरा एग्जाम दिया 6-6 महीने में, और क्लियर हो गया। 2 बार 2 एग्जाम दिए 6-6 महीने में और सीए बन गया, पास हो गया। और मेरा वो कजिन, मेरे बाद भी उसने 6 एग्जाम और दिए, 3 साल और लगे उसको, उसके बाद वो पास हुआ। तो भगवान वो कैसे क्या करता है हमको पता नहीं होता है, लेकिन इसमें कोई कृपा की बात नहीं है। मेरा निश्चय था बाबा में, और आगे का लक्ष्य भी यही था कि इस डिग्री के द्वारा सेवा करनी है, जो भी यज्ञ की सेवा मिले वो सेवा करनी है। तो सहज रीति हो गया। और कमाल राजयोग का भी था कि जब हम राजयोग करते हैं तो हमारे मन से वेस्ट और नेगेटिव खत्म होने लगता है, तो जो एक बार पढ़ते हैं वो याद हो जाता है। और मूल बात है कि वो 3 घंटे का जो एग्जाम का टाइम है, उस 3 घंटे में वो प्रश्न देखने के बाद वो पढ़ा हुआ याद आ जावे। पढ़ते तो सब हैं, लेकिन उस 3 घंटे में मन शांत रहे और वो पढ़ा हुआ याद आ जावे तो पास हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बाबा ने डिग्री दिला दी। तो ये केवल डिग्री की बात नहीं है, हमारे जीवन की हर पहलू में भगवान की मदद मिल सकती है, हर पहलू में। हमारे जीवन में ऐसे कई एग्जाम्पल है, वो सुनाने बैठू तो रात भी कम पड़े, इतने बाबा ने इन 34 वर्षों में हमें दिया है, जिसको कहते हैं कि बेहद का दिया है, हद भी नहीं रखी कोई। हम इतना सा मांगे वो इतना देता है। एक्चुअली तो भगवान से हमको मांगने की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम मांग के कितना मांगेंगे, इतना 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 मांगेंगे, और वो देने वाला कितना देगा अगर वो दिया तो। अडलक किसको जिसको कहते हैं, अनलिमिटेड, उतना वो देता है। तो परमात्मा पिता का स्वरूप ही दाता स्वरूप है, वो हमेशा देने वाला है, और उसी रूप में उसको हमेशा याद किया जाता है। अब जो हमारे इस संगम युग के जीवन का लक्ष्य जो आपने बताया, देवी देवता बनना, तो देवता का भी क्या मतलब होता है, देने वाला। जो देने वाला है उसको देवता कहा जाता है। तो सदा देना है हमें। लोग तो प्रकृति के 5 तत्वों को भी देवता कह देते हैं, सूर्य को भी देवता कह देते हैं। सूर्य को देवता क्यों कहते हैं, वह हमें रोशनी देता है, धूप देता है, गर्मी देता है, तो वो देवता हो गया। तो क्या वो साहूकार को देता है और चोर को नहीं देता है, वो इंडिया वालों को देता है, पाकिस्तान वालों को नहीं देता है, वो स्त्री को देता, पुरुष को नहीं देता है, वो पुण्यात्माओं को देता है, पापात्माओं को नहीं देता है, बड़ों को देता है, बच्चों को नहीं देता है, वो क्या करता है, सबको देवता। देवता माना जो सबको देवे, सबके लिए वो उपलब्ध रहे। तो देवी देवताओं के मंदिर में हम जाते हैं, ज्ञान में आने से पहले तो बहुत जाते थे, तब भी कि सभी प्रकार के लोग वहां आते हैं, सभी प्रकार के लोग, अलग अलग बिजनेस करने वाले, अलग अलग प्रकार के, उनको भी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, वो देवता स्वरूप है। तो वो देवता स्वरूप हमारा इस संगम युग की धारणाओं से बनता है कि यहां हम कितना दे रहे हैं, प्रैक्टिकली कितना दे रहे हैं, उसके आधार पर हमारी यादगार बनती है। कोई कोई देवी देवता का मंदिर इतना फेमस होता है कि वहां कुछ भी मन्नत रखो पूरी होती है, और कईयों के यहां जाओ, साल भर जाओ, दो साल जाओ, तब जाके कोई मन्नत पूरी होती है। तो संगम युग में हमारी अवस्था क्या रही, हम किस प्रकार के देवता संगम युग में बने। सतयुग में बनेंगे वो तो प्रारब्ध है, पुरुषार्थी जीवन ये संगम युग का है। तो संगम युग में हमारा वो कैसा स्वरूप रहा देवता का, वो हमारा यादगार पूज्य स्वरूप भी बनेगा। देवी सतयुग में भी त्रेता में भी वो पोजीशन मिलेगी, और बाकी के द्वापर कलयुग में भी जो हमारा पूज्य स्वरूप है वो उसी आधार से बनेगा कि हम कैसे रहे संगम युग में देवता स्वरूप। कोई हमारा बहुत अच्छा परिचित है, हमें हर प्रकार से मदद करता है, हमारा इज्जत देता है, हमारा सम्मान करता है, उसको तो हम देवता स्वरूप बन के शुभकामनाएं दे रहे हैं, गुड विशेष दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। लेकिन कोई जो हमारी इंसल्ट करता है, चुगली करता है, अपमान करता है, उसको हम नहीं दे रहे हैं, तो परफेक्ट देवता स्वरूप नहीं हुए। क्या हो गए? खंडित हो गए, खंडित हो गए। एक है सदा दे रहे हैं, एक है कभी कभी दे रहे हैं। तो वही हमारा पूजा का भी उसी प्रकार से होगा। किसी मंदिर में दिन में 8 बार पूजा होती है, किसी मंदिर में 8 दिन में 1 बार होती है। तो हमारा यादगार कैसा बनेगा वो कौन निश्चित करने वाला है? कौन निश्चित करने वाला है? हमारे आसपास हमारे परिवार वाले निश्चित करेंगे, हमारे ऑफिस वाले निश्चित करेंगे, हमारी टीचर बहन निश्चित करेगी। हमारा चाहे वो सतयुग का पद कहो या पूज्य स्वरूप कहो, वो कौन निश्चित करने वाला है? हम खुद करने वाले हैं। और कब करने वाले हैं? अभी ही करने वाले हैं। तो हमें कौन सा दाता स्वरूप बनना है? 8 दिन में 1 दिन पूजा वाला या दिन में 8 बार पूजा वाला, कैसा बनना है निश्चित कर। देखो ये सीधा सीधा गणित है, यहां कोई आशीर्वाद कृपा तथास्तु वाली बात नहीं है। कृपा का क्या अर्थ है? कृपा, करो और पाओ, करो और पाओ। तो अभी वर्तमान समय इस संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में, हम प्रैक्टिकली वो दाता स्वरूप बनेंगे तो हमारा पूरा भविष्य उसी आधार पर बनने वाला है, सदा दाता स्वरूप। और मैं बताऊं, दाता स्वरूप में कोई स्थूल चीजें देने की बात नहीं कही बाबा ने, उल्टा और बाबा मना करता था स्थूल चीजों के लिए। लेकिन क्या देना है? गुणों का दान, शक्तियों का दान, अपने चाल चलन चेहरे से किसी को बाबा के नजदीक लाना, उसको निश्चिंत बनाना, ये देने के लिए बाबा ने कहा है, वो दाता स्वरूप है। और पता है सबसे बड़ा जो दाता स्वरूप होता है वो होता है माफी देना किसी को। हम क्या करते हैं? बात को पकड़ के रख लेते हैं अपने मन में, तो माफी नहीं देते हैं। माफी नहीं देते हैं तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है, बात स्टक हो जाता है हमारा माइंड वहां पे, उससे आगे ही नहीं बढ़ पाते हम। ब्रह्मा बाबा का दाता स्वरूप का एक एग्जाम्पल मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जो रमेश भाई जी ने मुझे हमें सुनाया था, यहां साकार बाबा के समय की बात है। यज्ञ का एक समर्पित भाई किसी बहन को लेके चला गया, शादी कर ली। अब बहुत बदनामी हुई, मतलब यज्ञ में जो दूसरे भाई बहने थे उनको बहुत बुरा लगा, और नाम वैसा कि काला मुंह किया, काला मुंह किया, वही नाम हो गया भाई, उस भाई ने ऐसा किया, काला मुंह किया। कुछ महीनों के पश्चात वो भाई आया मधुबन, लेकिन मन में टू मच गिल्टी, बहुत ज्यादा अफसोस, पछतावा अंदर कैसे आवे, शर्म अंदर कैसे आवे। तो गेट पर खड़ा था और रो रहा था, गेट पर खड़ा कर। तो तुरंत समाचार फैल गया अंदर कि वो आया है, काला मुंह करने वाला आया, काला मुंह करने वाला, नाम ही वो हो गया, काला मुंह करने वाला आया। तो सब बड़ों को पता चला, दादियों को पता चला। तो अब बाबा को कौन कहने जावे, तो लच्छू दादी को कहा दादियों ने कि बाबा को बताओ वो आया है। बाबा रमेश भाई के साथ मीटिंग कर रहे थे, झोंपड़ी में बैठे थे, बात कर रहे थे। तो लच्छू दादी आई, आके कहा बाबा वो काला मुंह करने वाला है, वो आया है, सब नाम बताया उसका कि वो आया। तो बाबा ने कहा कहाँ है वो, तो वो गेट पर खड़ा है, मेन गेट पर वही खड़ा हुआ है। तो ब्रह्मा बाबा उठे और तेजी से चलते हुए गेट पर गए और जाके उसको गले लगाया, गले लगा के उसको, बच्चे आओ अंदर आओ, बच्चे अंदर आओ, अंदर ले गए। फिर जो निमित्त थे उनको बोला कि वो कमरा बच्चे को दो, कमरा दो, फिर बच्चा मेरे से मिलने आएगा। ऐसा करके उसको कमरे में भेजा और फिर वापस झोंपड़ी में आके बैठे। जब आके रमेश भाई सारा नजारा देख रहे थे, उनके पीछे पीछे गए रमेश भाई, देख रहे थे बाबा क्या कर रहा है। फिर वापस झोंपड़ी में आके बैठे तो फिर बाबा ने कहा, वो तो बोलो बच्चे क्या कह रहे थे तुम, रमेश भाई को बोला, क्या बच्चे क्या कह रहे थे तुम बताओ। तो रमेश भाई बोले, बाबा वो बात तो अपन बाद में करेंगे, जो मैं कह रहा था वो तो बाद में करेंगे, अभी मेरे मन में एक प्रश्न है। अच्छा बताओ बच्चे क्या प्रश्न है। कि बाबा हम आपके सपूत बच्चों में से हैं, आपके श्रीमत पर चलकर सेवाएं करते हैं, सब कुछ करते हैं। हम जब बॉम्बे से आते हैं यहां पर, तो हमको कहा जाता है पहले कमरे में जाओ, नहा धो के आओ, मुरली पढ़ के आओ, फिर बाबा से मिलो। और वो जिसने यज्ञ की बदनामी की, इतना यज्ञ का नुकसान किया, काला मुंह किया, वो सब उससे मिलने के लिए आपने चप्पल तक नहीं पहनी और झोंपड़ी से दौड़ते हुए आप वहां गए, उसको गले लगाया, पुचकार किया और इतना प्यार लुटाया, और इसका क्या कारण है, ये क्या रहस्य है जो उसको आपने इतना ये कर दिया और हमको ऐसा करते हो आप। बाबा देखने लगे, मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा कि बच्चे अगर बाप नहीं जाता वहां तो आप कोई उसको बुलाते अंदर, कोई उसको अंदर आने देते, तो कि नहीं आने देते, तो कि उसके मन में पछतावा है, जो भी उसने किया उसने उसको महसूस किया है, उसके मन में पछतावा है और अब सुधार करने का लक्ष्य है, इसलिए वो वापिस आया है उस पछतावे के साथ। तो अगर बाप माफ नहीं करेगा तो कौन करेगा, इसलिए बेटा कैसा भी हो, बाप अगर वो महसूस कर रहा है सुधार की गुंजाइश है तो बाप उसको जरूर माफी देगा। आप भाई बहने तो माफी नहीं देंगे, पर बाप तो बाप है ना, तो बाप तो माफी देगा। अगर बाप भी माफी नहीं दिया तो फिर उसका दुनिया में कौन है। कितनी गहरी बात बाबा ने समझाई कि अगर सुधार की गुंजाइश है और महसूसता है उसके अंदर तो उसे चांस देना चाहिए। तो इतनी बड़ी माफी देना, कितना दाता स्वरूप का बेहद का दिल होगा तब माफी दे सकते हैं। और हमारे पास तो क्या होता है, किसी ने कोई बात कह दी या हमारी कोई झूठी बात या सच्ची बात भी क्रिटिसाइज के रूप में किसी को कह दी तो बोलना ही छोड़ देंगे, उसे सामने भी नहीं देखेंगे। और वो एक दो दिन नहीं, महीनों वर्षों तक वैसा ही चलता रहेगा। तो दाता स्वरूप कैसे बनेगा हमारा, वो बाप समान अनकंडीशनल हो जाता है, देना पूरा सदा काल का बेहद का, ये बाप समान देने का एक तरीका होता है। हमें कोई मांगे और देवे वो वाली बात नहीं होती है, लेकिन जब हम बाप समान स्थिति में स्थित होते हैं तो हमें पहले से ही टच होता है कि इसको ये चाहिए। और हमारे लिए अभी सबसे अच्छा देने का जो सारा दिन हम दे सकते हैं वो है शुभकामनाएं। उसमें हम हमारा कोई खर्च भी नहीं होता है देने के, लेकिन सारा दिन सबको दे सकते हैं, अनलिमिटेड दे सकते हैं। और चाहे किसी ने हमारा फेवर नहीं भी किया, हमारे लिए वो ठीक नहीं भी कर रहा है, उसे भी वो दे सकते हैं और दे के उनको भी श्रेष्ठ स्थिति में ला सकते हैं। सदा शुभ भावना, शुभकामना, कोई भी मिले, कोई भी बात हो, इसका भला हो, इसका कल्याण हो, ये खुश रहे, ये आगे बढ़े, ये निर्विघ्न रहे, ये शांत रहे, ये निरोगी रहे, इसकी बहुत उन्नति हो, हमारे मन से, चाहे हम बोल के शुभकामना देवे चाहे मन से शुभकामना देवे, लेकिन वो शुभकामनाएं सदा ही हमारे दिल से निकलनी चाहिए। जैसे झरने से पानी कैसे बहता है, ऐसे हम आत्मा से कौन सा झरना बहना चाहिए, शुभकामना का झरना बहना चाहिए। इससे सामने वाले को कब फायदा होगा या नहीं होगा वो बाद की बात है। पहला फायदा किसका होगा, पहला फायदा हमारा अपना होगा, जो हमारा मन पॉजिटिव हो जाएगा, हमारे विचार एकदम निर्मल हो जाएंगे, हम बहुत शांत हो जाएंगे और बाबा की याद रहेगी उससे कि बाबा से किरणें लिया और दिया, किरणें लिया और दिया, ये स्वरूप हो जाएगा। तो ये एक स्वरूप ऐसा है शुभ भावना शुभकामना का जो हम सब बन सकते हैं। हमारे पास पैसे हैं या नहीं है, हमारे पास टाइम है या नहीं है, हम किसी को पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं, इसमें किसी की कोई जरूरत नहीं है। सदा ये शुभकामना का झरना बहता रहे। मेरे को तो कोई फोन भी आता है तो मैं तुरंत फोन उठा नहीं लेता, या तो उसका नाम आता है सेव किया हुआ है तो, सेव नहीं किया हुआ है तो अननोन नंबर आता है तो भी उसको पहले 2-4 सेकंड 5 सेकंड गुड विशेस, कल्याण हो, खुश रहो, आगे बढ़ो, फिर फोन उठाता। ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एकदम से नहीं होगा, इसका निरंतर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, निरंतर प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो जाके ये हो सकेगा, ये स्वरूप हमारा। और दातापन में बाबा ये नहीं कहता है कि आप धन दे दो किसी को, सामान दे दो किसी को, ये कुछ बात नहीं। हाँ, हमारे पास बहुत है, हम सहयोग कर सकते तो सहयोग करें, वो जरूर सहयोग करें हम, लेकिन जो ये अविनाशी खजाना है, गुणों का दान, शक्तियों का दान, ये हमेशा देना है। और ये हमने प्रैक्टिकली, चलो साकार बाबा को तो हमने इन आंखों से नहीं देखा, लेकिन कहानियां तो सुनी है, बाबा की जीवन कहानी पढ़ी है, अभी तो फिल्में भी कितनी बन चुकी है उस पे, वो भी देखी है, और अव्यक्त बाप दादा को भी देखा है, और दादियों को देखा है प्रैक्टिकली, बड़े भाई बहनों को देखा है कि कैसे वो निरंतर देते रहते हैं दाता स्वरूप। मुझे बहुत सौभाग्य मिला निर्वेर भाई जी के साथ भी रहने का, तो मैंने देखा एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल निर्वेर भाई जी के जीवन का। नीचे कॉलोनी में एक भाई रहते थे शांतिवन के बाहर, वो संस्था की बहुत बदनामी, एंटी हो गए थे और संस्था की बहुत बदनामी करते थे, अलग अलग डिपार्टमेंट में लेटर लिखना, बुराइयां करना, कमियां कमजोरियां निकाल के बताना, ये ऐसे सब कारोबार करते थे वो शांतिवन निवासी। सभी हम मतलब बहुत परेशान हो गए थे कि ये भाई रोज कुछ न कुछ नया, न्यूज़पेपर में कुछ देता है, कहाँ क्या देता है, पुलिस में कुछ देता है, कहीं कलेक्टर को कुछ देता है, इस प्रकार से परेशान करके रखा था। तो सबको थोड़ा उसके प्रति मन में रोष था, उस भाई के प्रति, कि ये कितना यज्ञ का डिससर्विस कर रहा है, कितना क्या कर रहा है। एक बार उसने क्या किया, सब निर्वेर भाई जी को आके कहते भी थे कि भाई साहब इसका कुछ कीजिए, इसको कुछ समझाइए, इसका इलाज करे, इसका ये करे, मतलब कुछ न कुछ आके भाई साहब को बताते थे। भाई साहब ये कहते थे, भाई शुभकामना रखो, आप शुभकामना रखो, वो भी बदल जाएगा, शुभकामना रखो, बदल जाएगा। और जैसे धीरज की परीक्षा हो जाती थी हमारी कि भाई साहब कितना धीरज रख रहे, कितनी शुभकामना रख रहे हमको। एक बार क्या हुआ कि उसने किसी को चेक से पेमेंट किया होगा उस भाई ने, और वो चेक रिटर्न हो गया, तो जिसको चेक दिया था उसने कैश कर दिया उस पर, तो गिरफ्तार हो गया, तो पुलिस ले गई थाने में, गिरफ्तार कर लिया। तो दूसरे दिन उसकी वाइफ रोते रोते भाई साहब के पास आई, निर्वर भाई के पास, कि भाई साहब वो अकेले ही कमाने वाले थे परिवार में, अभी तो वो चले गए, घर में कुछ खाने को भी नहीं है, ये भी नहीं है, अभी हम क्या करें, ये सब करें। तो हम जो कुछ दो चार सामने थे उस समय, हमको मन में आया कि ये तो उसके कर्मों का सजा मिली है उसको, अब भुगतो, हम तो ऐसा सोच रहे थे। भाई साहब ने क्या किया, भाई साहब ने उनके साथी जो है वो मोहन भाई जो उनका सहयोगी था, उसको बुलाया, मोहन इधर आओ, अच्छा इनको देखो 5 किलो चावल, 2 किलो शक्कर, ये वो सारी लिस्ट बना दी कि सारा इनको पहुंचा दो घर पे। अभी हम सोच रहे थे कि ये इतना यज्ञ का बदनामी किया, ये सब किया, तो इनको भुगतो, और भाई साहब ने वो पहुंचा दिया कि सारा राशन इनके घर पे पहुंचाओ, कि इनके घर पे बच्चों को, इनको सबको खाना मिले। फिर 2-3 दिन बाद फिर आई कि भाई साहब हम तो बड़े मतलब अनसेफ हो गए हैं घर में, ये वो तो जेल में है ये, आप कैसे भी करके उसको छुड़ाओ, कैसे भी करके उसको बाहर निकालो। तो भाई साहब ने किसी को भेज के उसकी जमानत करवाई और उसको बाहर निकलवाया। अब वो सब हमारे लिए एक आश्चर्य भी था और एक सीख भी थी कि कैसे दाता स्वरूप होते हैं। और उससे क्या हुआ, उससे वो परिवर्तन भी हुआ, लेकिन हमारी तरफ से क्या हुआ, वो दातापन का स्वरूप, सहयोग का स्वरूप। तो ऐसा हमने बड़ों की लाइफ में देखा प्रैक्टिकली, वो उनको कुछ कह रहे हैं, थोड़ा ऊंची आवाज में भी कह रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन बड़े जो हैं उनको आथत दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं आगे बढ़ाने का, उनको निर्विघ्न करने का प्रयास कर रहे हैं। ये दाता स्वरूप हमने देखा और इसी से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है। जब हमारा निरंतर दाता स्वरूप देखते हैं तब व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है। देखो मैं क्या कर रहा था और ये क्या कर रहे हैं। प्रैक्टिकली मैं गांधी जी के जीवन का एक किस्सा सुनाता हूं, क्योंकि मेरी जीवन परिवर्तन में उनकी कथा का भी बहुत योगदान रहा। तो उनका एक किस्सा सुनाता हूं। उनके आश्रम में, अहमदाबाद साबरमती आश्रम में, सुबह सुबह प्रार्थना होती थी, तो सभी प्रार्थना में जाते थे, प्रार्थना करते थे। कोई सिक्योरिटी वाला, मतलब कोई एक दो सेवादारी इधर उधर रहता था, बाकी सब प्रार्थना में जाते थे। तो एक दिन प्रार्थना चल रही थी सुबह की, और दो सेवाधारियों ने एक चोर को पकड़ा जो चोरी करने के लिए आश्रम में घुस गया था। तो उन्होंने उसको पकड़ लिया रंगे हाथों, पर चूंकि आज प्रार्थना चल रही थी तो उन्होंने सोचा प्रार्थना पूरी हो फिर बापू के सामने इनको ले जाएंगे। तो जैसे ही प्रार्थना पूरी हुई तो वो बापू प्रार्थना से नीचे उतर रहे थे, वो उसको ले गए पकड़ के, दोनों ने हाथ एकदम टाइट पकड़ा हुआ था उसको। तो गए तो बापू ने पूछा, कौन है ये, क्या बात है, आप लोग इसको ऐसे क्यों पकड़े हुए हो? तो कहा कि बापू प्रार्थना के समय सब इधर थे तो ये चोर चोरी करने के लिए घुस गया और हमने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया है, ये चोरी कर रहा था, अब आप इसको कड़ी से कड़ी सजा दो ताकि ये जीवन में वापस कभी चोरी नहीं करे, ऐसी आप कड़ी सजा दो इसको। तो गांधी जी ने कहा अच्छा, कहा अच्छा देखो अभी प्रार्थना पूरी हुई है, अभी ये 8:30 बज गया है, नाश्ते का टाइम है, आप इसको एक बार नाश्ता करा के लेके आओ। अब वो दोनों सेवादारी हक्के बक्के बोले, हम चोर पकड़ा है, चोरी कर रहा था, तो हम तो आपके पास लेके आए कि आप इसको सजा दो, और आप कह रहे कि इसको नाश्ता कराओ, नाश्ता करा के लेके आओ। बापू के ठीक है, ये चोरी कर रहा था, लेकिन ये भी तो मनुष्य है, इसको भी भूख लगती है, तो आप इसको नाश्ता करा के फिर मेरे पास लेके आओ, फिर मैं सजा देता हूं। बापू ने बोला तो करना ही पड़ेगा, क्या करेंगे। नाश्ता कराने ले गए उसको, चोर को नाश्ता करा, वो सोच रहे देखो क्या हाल, चोर को नाश्ता करा रहे हम और ले जाके कराया नाश्ता, फिर बापू के पास लेके आए। बापू ये देखो अभी आप इसको सजा दो। जैसे ही वो बापू के पास आया रोने लगा, बापू के पैरों में गिर गया कि बापू मैं सचमुच चोरी करने आया था, लेकिन आपका जो व्यवहार है उससे मुझे महसूस हुआ कि ये जिंदगी का गलत काम है, मैं कभी नहीं करूंगा, और मैं आज से प्रण लेता हूं कि मैं कोई चोरी नहीं करूंगा और मैं आपके आश्रम में ही सेवा करूंगा, अभी मुझे और कुछ नहीं करना है, बस आपके आश्रम में मुझे सेवा करनी है, मुझे आपके आप यहां आश्रम में रख लो। तो देखो कैसे चोर का हृदय परिवर्तन तुरंत हो गया। तो परमात्मा का दाता स्वरूप, चाहे वो निराकार शिव बाबा का है या ब्रह्मा बाबा का है, दोनों ही हमारे लौकिक अलौकिक और पारलौकिक बाप है, उनका दाता स्वरूप के किस्से हम बड़ों से सुनते हैं या बुक्स में पढ़ते हैं, तो वो स्वरूप हमको प्रैक्टिकल अपना बनाना है, वो फॉलो करना है। यहां का प्रैक्टिकल स्वरूप हमको यहां भी सुख देगा, ऐसा नहीं कि भविष्य में ही हमको हमारा पूज्य स्वरूप बनेगा या ऊंच पद मिलेगा, वो तो भविष्य की बात है, लेकिन यहां भी बहुत सुख देगा। आप देखो किसी की गलती माफ करके देखो, आपको कितनी खुशी होगी, कितना आप लाइट फील करेंगे। सबका अनुभव है ना जीवन में, जब हम माफ करते हैं तो। और कोई दुखी है, परेशान है, वो हमारे सामने आया, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं एकदम से, और हमारे सामने आए, हमारे दो मीठे बोल से, हमारी दृष्टि से, हमारे चेहरे से उसका वो दुख कम हो जाए, दूर हो जाए, वो 2-4 मिनट में तो आंसू रुक जाए और चेहरे पे थोड़ा हल्कापन आ जाए, ये हो गया गुणदान। बाबा दादी जानकी जी को कहती थी कि जनक बच्ची गुणदान करने में होशियार है। खास जानकी दादी का एग्जाम्पल लेते थे, बाबा देते थे। तो ये सबसे बड़ा दान हुआ गुणदान, जो हम ही कर सकते हैं, क्योंकि हमने बाबा के जीवन में वो देखा कि कैसे करना है प्रैक्टिकली। इसके समान अमूल्य दान और कोई नहीं हो सकता है। दुनिया में कहते हैं चक्षु दान महादान या शरीर दान महादान, वो सब है, वो अपनी अपनी जगह, वो भी जरूरी है, ठीक है, लेकिन आप किसी के जीवन में शांति ले आओ, किसी के जीवन में प्रेम ले आओ, किसी के जीवन में खुशियां ले आओ, किसी के जीवन को आनंद से भर दो, इस अलौकिक हमारे चाल चलन चेहरे से, तो इससे बड़ा दाता स्वरूप और कोई नहीं होता है। और ये हमको सीखने को मिलता है बाबा से। तो बाप समान मतलब अनकंडीशनल, बेहद, निरंतर, जिसको बाबा कहते हैं सदाकाल। तो सदाकाल तब कहेंगे कि बाप समान। हमारी चॉइस वाला होगा कि इसको देना है और इसको नहीं देना है, तो वो बाप समान स्थिति नहीं होगी। और कौन दे सकता है? जिसके पास है वो दे सकता है ही नहीं तो कहां से देंगे। इवन कोई हमारे सामने थोड़ा ऊंची आवाज में बोलेगा या हमारे सामने झूठ बोलेगा, इंसल्ट करेगा, और हमारे अंदर अगर वो दिव्य गुणों का खजाना भरा हुआ नहीं है तो हमारे से क्या बाहर निकलेगा? हम भी ऊंची आवाज कर देंगे, इरिटेट हो जाएंगे, जोश में बोल देंगे, जिसको कहते हैं गुस्सा कर लेंगे। इसका मतलब क्या है? अपने को प्रैक्टिकल चेक करना है कि अगर हमारा ये रेस्पॉन्स हो रहा है, इसका मतलब है कि अभी तक हमारे पास अंदर है ही नहीं वो खजाना। है तो देंगे। आप पेड़ पर पत्थर मारते हो, वो आपको आम देता है, क्योंकि उसके पास आम है इसलिए वो दे रहा है। नमक का व्यापारी नमक देगा, गुड़ का व्यापारी गुड़ देगा। अब हमारे पास क्या है, हम चेक करें कि हमारे पास क्या है, हम क्या दे रहे हैं सबको। बाबा क्या देता है वो हमारे सामने है कि बाबा ने क्या दिया सभी को। अब अगर हमको बाप समान बनना है तो हम भी ये सारे खजाने अपने में भरपूर रखेंगे, और जो समय आने वाला है उसके लिए भी बाबा ने इशारा दिया है कि जब हाहाकार का समय होगा, क्यों लगेगी, उस समय कोई वो आपसे पानी नहीं मांगेंगे, भोजन नहीं मांगेंगे, कपड़ा नहीं मांगेंगे। उस समय उनको क्या चाहिएगा? शांति चाहिएगी, सुरक्षा चाहिएगी, उनको खुशी चाहिएगी, तड़पेंगे वो लोग। लेकिन हम कब दे सकेंगे? जब हमारा स्टॉक भरपूर होगा। नहीं तो 2-5 को तो हमने खुशी दे दी, फिर 8वां 10वां आएगा तब हम भी गुस्सा करने लग जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे। तो उतनी धीरज, उतना सारा खजाना अगर हमने भरा जीवन में तो ही हम दे सकेंगे। एक सन्यासी थे, एक पहाड़ के नीचे रहते थे, और लोग कहते थे कि वो बड़े शांत स्वभाव के थे, उनको कभी गुस्सा नहीं आता था, कभी गुस्सा नहीं आता था। एक लड़के ने सोचा, थोड़ा चंचल स्वभाव का था, उसने सोचा कि परीक्षा लेते हैं, उनका गुस्सा आता है कि नहीं आता है, वो क्या देते हैं मुझे, मैं देखता हूं। तो वो शाम का समय था, 4-5 बजे का, तो गया उनकी झोंपड़ी में, कहा आओ बच्चे बैठो बैठो, बिठाया। फिर कहा देखो मेरा पहाड़ी पर जाने का, घूमने का टाइम हो गया है, तुम भी चलो साथ में। तो बच्चे बोले हाँ चलो चलो। तो जैसे ही वो झोंपड़ी से निकले तो उसने सन्यासी को पूछा कि महाराज आपकी उम्र कितनी है? तो सन्यासी ने कहा 80 बरस। ठीक है। फिर वो 10 मिनट चले, 5 मिनट चले आगे, 7 मिनट, फिर वो बच्चे ने पूछा कि वो महाराज आपकी उम्र कितनी है? तो उन्होंने कहा बेटा 80 वर्ष। फिर थोड़ी और चढ़ाई चढ़े, फिर बच्चा बोला कि आप इतनी चढ़ाई चढ़ रहे हो महाराज, आपकी उम्र कितनी है? तो उन्होंने कहा कि 80 बरस बेटा। फिर 5 मिनट चढ़े, फिर कहा महाराज वो आपकी उम्र कितनी है? महाराज बोला 80 बरस। उसने 10 बार पूछा और महाराज ने उतने ही शांति से बोला 80 बरस। फिर उसने कान पकड़ लिया कि मैं तो आपको गुस्सा दिलाना चाहता था, बार बार यही पूछ के बार बार गुस्सा दिलाना चाहता था, लेकिन आज मैं खुद ये सीख के जा रहा हूं आपसे कि हर परिस्थिति में शांत रहना है। तो ये बात बहुत छोटी है, मैंने बहुत वर्षों पहले कहानी के रूप में सुनी थी, लेकिन मुझे प्रेरणा देती है। मुझे भी सारे इंडिया से बहनें फोन करती है, सारा कारोबार अकाउंट फाइनेंस का कारोबार करते हैं तो सब फोन करती है, तब वो कहानी याद आती है, मुझे भी शांत स्वरूप होके जवाब देना है, चाहे 10 बार पूछे चाहे 20 बार पूछे, मुझे शांत स्वरूप होके जवाब देना है। तो वो स्वरूप जब इन आत्मा के जो 7 गुण है, इन 7 गुणों का जब हम स्वरूप बन जाएंगे, फिर ये बाप समान दातापन की स्थिति होगी। तो हमारा प्रयास यही रहे कि हम इसके स्वरूप बन जाएं। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामना है कि इस भट्टी में आप सब बाप समान दाता स्वरूप बन जाएं, ताकि निरंतर सदा ही देते रहें और देने से ही अपना भी खजाना भरता रहेगा। अविनाशी खजाना हमारा भी तो भरना है ना, वो देने से ही भरेगा। सदा आपका खजाना भरपूर हो। ओम शांति।